मापन के स्तर लेवल्स ऑफ मेजरमेंट या मापन मापनी के प्रकार टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। मनोवैज्ञानिक शोध तथा शैक्षिक शोधों में मापन के चार स्तर की चर्चा की गई है। इन स्तरों को मापन मापनी भी कहा जाता है, जो निम्नांकित हैं: एक, नामिक या वर्गीकृत मापन; दो, क्रमिक मापन; तीन, अंतराल मापन; चार, अनुपात मापन। इन सबका वर्णन निम्नांकित है: एक, नाभिक या वर्गीकृत मापन, नॉमिनल और क्लासिफैक्टरी मेजरमेंट, इसे नाभिक मापनी भी कहा जाता है तथा यह मापन का सबसे निम्न स्तर है। इस तरह के मापन में शोधकर्ता संख्या या अंक का प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं या समूहों की पहचान या उसका नामकरण करने के लिए करता है। स्पष्ट है कि यह मापन एक अत्यंत ही सरल मापन है, जिसके द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों को एक तरह से विभिन्न भागों में वर्गीकृत क्लासिफाई किया जाता है। शायद यही कारण है कि इसे एक वर्गीकृत मापन भी कहा जाता है, जैसे व्यक्तियों को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में वर्गीकृत करना, मानसिक बीमारियों को विभिन्न समूहों जैसे हिस्टीरिया, मनोविदालिता, स्थिर व्यामोह, उत्साह विषाद, मनोविकृति आदि में वर्गीकरण करना नामिक या वर्गीकृत मापन के उदाहरण हैं। पैराग्राफ चेंज। नामिक मापन की विशेषता यह होती है कि इसमें दो समूह के सदस्य आपस में तो कभी भी तुल्य इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, परंतु किसी एक समूह के सभी सदस्य आपस में तुल्य होते हैं। तुल्यता का यह संबंध प्रतिवर्ती परिवर्त्य ट्रांजिटिव तथा प्रतिसम होता है। नाभिक मापन में खास खास सांख्यिकीय प्रक्रियाओं जैसे बारंबारता, प्रतिशत, अनुपात, बहुलक एवं असंगत गुणांक का प्रयोग सुविधापूर्वक किया जाता है। नामिक मापन की परिसीमा यह है कि यह अत्यधिक सरल एवं प्राथमिक होता है। यही कारण है कि कुछ लोग इस तरह के मापन मापनी को सही अर्थ में मापनी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दो, क्रमिक मापन। यह मापन का दूसरा स्तर है। क्रमिक मापनी में संख्याओं द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं के कोटिक्रम का पता चलता है। इस तरह के मापन में कोटियों का उच्चतम से न्यूनतम या न्यूनतम से उच्चतम की दिशा में दिखलाया जाता है। इस तरह के मापन से यह भी पता चलता है कि कौन वस्तु या व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बड़ा है, छोटा है, भारी है, हल्का है, ऊंचा है, नीचा है आदि। स्पष्टतः इस तरह के मापन में वस्तुओं के गुणों के बारे में कम होने या अधिक होने का पता चलता है। सामाजिक आर्थिक स्तर का मापन क्रमिक मापन का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें व्यक्तियों का मापन मूल रूप से सामाजिक आर्थिक स्तर के तीन कोटियों में किया जाता है: उच्चतर वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग। इस तरह के मापन में उच्च वर्ग का प्रत्येक सदस्य प्रतिष्ठा में मध्यम वर्ग से ऊपर है तथा मध्यम वर्ग का प्रत्येक सदस्य निम्न वर्ग से प्रतिष्ठा में ऊंचा है। उसी तरह से यदि हम छात्रों के समूह को उनके बुद्धि प्राप्तांक के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि कोटियों के रूप में व्यक्त करें तो यह भी क्रमिक मापन का एक अच्छा उदाहरण होगा। इस तरह के मापन में किसी समूह या कोटि के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे के तुल्य तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनमें अन्य समूह या कोटि से ऊंचा या नीचा होने का भी संबंध होता है। जैसे मध्यम सामाजिक आर्थिक वर्ग के सभी सदस्य एक दूसरे से सामाजिक प्रतिष्ठा में समान होते हैं और साथ साथ ही उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के सदस्यों की तुलना में कम परंतु निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के सदस्यों की तुलना में अधिक होता है। क्रमिक मापन से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए माध्यिका, शततमक, कोटि अंतर, सहसंबंध आदि मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। क्रमिक मापन का एक उदाहरण, एक महत्वपूर्ण दोष यह बतलाया गया है कि क्रमिक आंकड़े निरपेक्ष नहीं होते हैं और ना ही वे यह ही बतला पाते हैं कि वहाँ क्या विभिन्न कोटियों से संबंधित गुणों में अंतर में समान होंगे। जैसे मान लिया जाए कि अनीता, सुनीता एवं संगीता को बुद्धि परीक्षण का प्राप्तांक स्कोर क्रमशः 70, 65, 14 आया है। अब इसे कोटि के रूप में व्यक्त करने पर क्रमशः फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड कहा जाएगा। यहाँ अनीता तथा सुनीता की बुद्धि प्राप्तांक में मात्र 70 माइनस 65 = 5 का अंतर है, जबकि सुनीता एवं संगीता के बुद्धि प्राप्तांक में 65 माइनस 14 = 51 का अंतर है। परंतु इन अंतरों का बिना ख्याल किए हुए कि जब उन्हें कोटि रैंक में बदला जाता है तो उसे फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड कहा जाता है। कोटि देखने से तो यही पता चलता है कि अनीता, सुनीता एवं संगीता की बुद्धि में अंतर अधिक नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि अनीता एवं सुनीता की बुद्धि प्राप्तांक में तो मात्र 5 प्राप्तांकों का अंतर है, परंतु यह दोनों लड़कियों के बुद्धि प्राप्तांक तथा संगीता के बुद्धि प्राप्तांक में काफ़ी अंतर है। तीन अंतराल मापन यह मापन का तीसरा स्तर है और इसमें से सारे गुण सम्मिलित रहते हैं जो नामिक मापन तथा क्रमिक मापन में होते हैं। इस मापन की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मापन की इकाई समान एवं स्थिर होती है, यही कारण है कि इसे समान अंतराल मापन भी कहा जाता है। इस तरह के मापन में चूंकि संख्याओं द्वारा समान अंतराल का पता चलता है, इसलिए इन्हें आसानी से आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि ए, बी, सी एवं डी 4 वस्तुएं हैं जिन्हें मापने के बाद क्रमशः 20, 16, 8 एवं 4 अंक दिए गए। यहाँ ए, सी का अंतर ए माइनस सी इज इक्वल टू 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 है, जो बी एवं डी के अंतर यानी 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 के बराबर है। इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से करते हुए यह भी कहा जा सकता है कि ए तथा बी के बीच का अंतराल 20 से 16 इक्वल टू 4 है तथा सी एवं डी के बीच का अंतराल 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 है। इन अंतरालों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। 20 माइनस 16 प्लस 8 माइनस 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। स्पष्ट हुआ कि अंतराल मापन पर अंतरालों या दूरियों को जोड़ा जा सकता है। बुद्धि प्राप्तांक, अभिक्षमता प्राप्तांक, कैलेंडर में दिखलाया गया दिन, फॉरेनहाइट एवं सेल्सियस थर्मामीटर का मापन आदि अंतराल मापन के अच्छे उदाहरण हैं। अंतराल मापन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें वास्तविक शून्य बिंदु न होकर यथेच्छ शून्य बिंदु होते हैं। पैराग्राफ चेंज, अंतराल मापन में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण में अंकगणितीय माध्य मानक विचलन पियर्सन आर टी परीक्षण तथा एफ परीक्षण आदि का प्रयोग होता है, परंतु परिवर्तनशीलता के गुणांक का प्रयोग वर्जित माना गया है। पैराग्राफ चेंज 4, अनुपात मापन। अनुपात मापन मापन का सबसे उच्च स्तर है और इसमें नाभिक क्रमिक एवं अंतराल मापन के सभी गुण मौजूद होते हैं तथा साथ ही साथ उसमें एक वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। अनुपात मापन की मुख्य विशेषता यह है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात मापन की इकाई से स्वतंत्र होता है और इसलिए इसे सही ढंग से बराबर कर तुलना की जा सकती है। जैसे 15 एवं 105 का अनुपात 15:105 और 7:1:7 के बराबर है। तरफ चेंज, अनुपात मापन का सामान्य उदाहरण भार, ऊंचाई, लंबाई आदि का मापन है। इससे स्पष्ट है कि इस तरह का मापन अधिकतर प्राकृतिक विज्ञानों में न कि सामाजिक विज्ञानों में होता है। अनुपात मापन में चूंकि एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है, इसलिए यह अंतराल मापन से भिन्न होता है, जहां एक वास्तविक शून्य बिंदु न होकर यथेक्ष शून्य बिंदु होता है। शायद यही कारण है कि जब हम किसी वस्तु की लंबाई मापकर यह कहते हैं कि यह 6 फीट है, तो इसका स्पष्ट मतलब शून्य से 6 फीट है। यह अनुपात मापन का उदाहरण है, परंतु यदि हम यह कहते हैं कि आज के दिन का तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या इसका मतलब होगा कि यह सचमुच में 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस अधिक है? शायद नहीं, क्योंकि यह 0 डिग्री वास्तविक न होकर यथेच्छ आर्बिट्ररी है। 0 डिग्री अगर वास्तविक होता तो यह हिमांक बिंदु होता और तब इस पर वातावरण की सभी वस्तुएं जम जाती हैं। सच्चाई यह है कि दिन का तापक्रम -2 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस आदि में भी व्यक्त किया जाता है। पैराग्राफ चेंज, इस तरह से देखते हैं कि मापन के कई स्तर हैं। इन स्तरों में मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा के शोधों में अंतराल मापन तथा क्रमिक मापन का प्रयोग सर्वाधिक होता है। अनुपयुक्त मापनी का प्रयोग भौतिक विज्ञानों में तुलनात्मक रूप से अधिक किया जाता है।